ओम शांति।
आखिरी शंकु आएगा।
बाबा के सभी बच्चे हैं, जब भी बाबा के बच्चे शुरुआत में जब आते हैं और चलते भी है तो सभी का लक्ष्य होता है कि हमारा लक्ष्य ऊंचे से ऊंचा हो, हम सबसे आगे जाएं। कोई भी ऐसा ब्राह्मण बच्चा नहीं होगा जिसका लक्ष्य इतना ऊंचा ना हो, चाहे घर गृहस्थ में रहते हो चाहे कहीं भी रहते हो। लेकिन यहाँ बाबा के घर में मधुवन में आपने देखा होगा बहुत बहुत ऐसे बच्चे भी हैं जो यहाँ नहीं पहुंच पाते हैं। दूसरा है कि यहाँ जो बार बार सेवा में आते हैं उसको भी हम देखते हैं कि बाबा का कितना लाडला बच्चा भी होगा वो, कि उसको बार बार चांस मिलता है यहाँ। और हम जो यहाँ रहते हैं तो जो सेवा में लोग आते हैं हम रहते हैं तो जरूर बाबा ने हमारे प्रति ऐसा ऊंचा लक्ष्य रखा होगा, तभी तो ऐसी जगह पे रखा है कि यही मेरे बच्चे जग में रोशन करे, नाम वाला करे। तभी तो हमको वहां से भी निकाल के ऐसी जगह पे लाए हैं जहाँ एक संगठन ऐसा है जिस संगठन में पुरुषार्थ चलता है। तो हमको भी भाग्यशाली समझते हैं और जो सेवा में हमेशा आते हैं उसको भी, और जो बाबा को मिलने आते हैं उसको भी हम भाग्यशाली समझते हैं। तो ये ऐसी भूमि है जिस भूमि परिवर्तन भूमि भी है, वरदानी भूमि भी है। तो ऐसा तो नहीं हो सकता है कि यहाँ से बाहर जब सब एग्जाम आने के बाद भी पास विद ऑनर हो जाएंगे, क्योंकि बाबा साथ है, सर्वशक्तिमान साथ है। आज का हमारा टॉपिक है ब्राह्मण जीवन में त्रिशंकु स्थिति। त्रिशंकु अवस्था क्या है? तो इस त्रिशंकु की बात जब करते हैं तभी इतिहास याद आता है कि ऐसे रामायण में एक कहानी है त्रिशंकु स्वर्ग के बारे में। उसमें बताया है कि सूर्यवंशी सत्यनिष्ठ राजा था, बहुत दयालु था, बहुत कृपालु था और धार्मिक भी था और सभी का दिल भी जीतता था। उसका शासन काल में किसी को कोई भी तकलीफ नहीं होती थी और वो अपना आराध्य देव को भी इतना लगन से याद करता था। उसकी हर जो भी उसकी नियम मर्यादा था उसमें रहता था। उसका शासन काल के दरमियान उसने किसी को भी दुख नहीं दिया था। लेकिन उसकी एक इच्छा थी कि मैं बहुत अच्छी रीति से मेरे को मोक्ष मिले, मैं स्वर्ग में जाऊं। तो जब उसका शासन काल पूरा हुआ तो उसका पुत्र था जो हरिश्चंद्र राजा जिसको कहते हैं, उसको सब कुछ दे करके, अपना एक गुरु था वशिष्ठ गुरु था, उनके पास गया और उनको बताया कि मेरी इच्छा है कि मुझे स्वर्ग में जाना है लेकिन इस शरीर के साथ स्वर्ग में जाना है। तो वो ऐसे तो हम शरीर के साथ ही स्वर्ग में भी जाते हैं कि उसका स्वर्ग कुछ अलग था। उन्होंने बताया कि इस शरीर से ही मैं स्वर्ग में जाऊंगा। हम भी चाहते हैं कि बाबा कई बार कहते हैं कि देखो स्वर्ग जब संगम पूरा हो जाएगा, हाहाकार हो जाएगा, बहुत ही सारी कितनी तकलीफें होंगी, मूसलधार बारिश होगा, ऐसे मतलब बहुत सारी तकलीफें होंगी, उसके बाद शरीर छूटेगा, सरसों मिसल पीस जाएंगे, ऐसी ऐसी बातें बताए और उसके बाद स्वर्ग आएगा। तो ऐसा लगता है कि इस शरीर से ही हम स्वर्ग में जाए, वो बीच वाला रास्ता ही ना आए, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है। सभी के लिए तो शरीर छोड़ना ही पड़ता है। उन्होंने एक इच्छा की थी तो वशिष्ठ गुरु के पास गए और कहा कि मुझे इस शरीर के साथ ही स्वर्ग में जाना है। तो उन्होंने बताया कि ऐसा तो हो नहीं सकता है, कभी भी ऐसा हो नहीं सकता है। तो उसको बहुत मनाया और बोला कि यज्ञ करो जिस यज्ञ से मैं मतलब कि ये प्राप्ति कर सकूं, लेकिन वशिष्ठ गुरु ने मना किया। तो फिर वो उनके बच्चों के पास गया। उनको बच्चों ने कहा कि जब ही हमारा पिताजी उन्होंने आपको मना किया है तो आपको मर्यादा में रहना चाहिए और आज्ञा में चलना चाहिए, अगर आज्ञा में नहीं चलेंगे तो फिर उन्होंने श्राप दे दिया उनको चंडाल बनने का। चंडाल माना जो स्मशान में जलाते हैं, अग्निदाह देने का काम करते हैं, तो उन्हों को मतलब कि फिर भी वो नहीं माने और फिर विश्वामित्र के पास आए। विश्वामित्र और वशिष्ठ दोनों प्रतिद्वंदी थे। उन्होंने बोला कि एक वचन दिया कि मैं तुमको जरूर एक शरीर के साथ ही स्वर्ग में भेजूंगा, क्योंकि बाबा ने मतलब कि भगवान ने ऐसे भक्ति मार्ग में भी बहुत शक्तियां दी है। तो उन्होंने बोला कि मैं तुमको इस शरीर के साथ ही स्वर्ग में भेजूंगा। तो जब ही उसको मतलब कि यज्ञ रचता है और सभी देवताओं को मालूम पड़ता है तो उसका बहुत विरोध भी करते हैं कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता है, लेकिन फिर भी विश्वामित्र ने उसको वचन दिया था कि मैं तुमको वहां भेजूंगा ही। तो फिर वो स्वर्ग के दरवाजे पर आ जाता है तो वहां इंद्र देवता बैठे हैं। तो बोला ये तो नहीं हो सकता है, मैं अंदर आने नहीं दूंगा। तो उसने अपनी शक्तियों से उसे नीचे धकेलने का शुरू किया और विश्वामित्र ने उसको ऊपर जाने के लिए मतलब कि सब दोनों के बीच में लटक गया, ना ऊपर जा सका ना नीचे आ सका। तो कहने का मतलब कि त्रिशंकु माना ना मनुष्य खुश रह सकता है, ना मनुष्य दुख में भी रह सकता है, ना मतलब अच्छी रीति से रह नहीं सकता है। अगर कितनी भी खुशी मिले तो भी खुश नहीं रह सकता है, तो दुख में दुखी सुख में भी दुखी हो जाता है, बीच में लटकता रहता है। तो बाबा कहते हैं कि यही कई बार मतलब कि ये तो एक कहानी है। कहानी का ये तात्पर्य ये है कि जो विश्वामित्र है वो सबका मित्र है, वो हर प्रकार से सबको मदद करता है। और वशिष्ठ है उसका बताया इस संसार में जो उसकी तुलना की है कि वो VIP होते हैं, जो अपना अधिकार अपने पास रखते हैं, उसके लिए कहा है। और दूसरा कहा है कि चांडाल मीन्स की जो आज्ञा को मतलब उल्लंघन करता है, भले कितना भी वो शिस्त में मर्यादा में अंत तक रहा लेकिन फिर भी आज्ञा का उल्लंघन जब करता है तो उसको चांडाल का उपाधि दे दी। तो बाबा कहता है कि यहाँ जो अपना ब्राह्मण जीवन में त्रिशंकु स्थिति उसको तो मुझे लगता है सबने अनुभव तो किया ही होगा, थोड़ा थोड़ा तो किया ही होगा, कई बार ऐसा होता है ना। तो संसद में भी हमने मतलब कि कभी हम तो समाचार देखते नहीं है लेकिन ऐसे कहते त्रिशंकु संसद बन गई है, और त्रिशंकु जब बन जाती है ना तभी एक जो निर्णय लेता है ना दूसरा उसको लेने नहीं देता है। तो ना प्रजा का सुख मिलता है, प्रजा को सुख मिलता है, ना वो भी दुखी रहते हैं, सब दुखी रहते हैं। तो यहाँ भी बाबा ने कहा है कि त्रिशंकु बन जाते हैं ब्राह्मण अवस्था में, ब्राह्मण बनने के बाद भी ऐसा क्या होता होगा कि वो मतलब कि ना सुख पा सकता है, ना दुख पा सकता है, ना आगे जा सकता है, ना पीछे जा सकता है। यहाँ हमने देखा कि कई कहते हैं कि जो सीनियर है उन्होंने तो बहुत जमा कर लिया है, तो अगर उनकी इसी अवस्था है तो भी वो आगे जा सकता है। बाबा ने कहा है कि लंबे काल का अभ्यास चाहिए, तो लंबे काल का अभ्यास उनके साथ तो जुड़ा हुआ है। अगर अभी उसकी थोड़ी भी गलती भी होती है तो भी उसका तो जमाई होता है। हम अगर उसकी कंपैरिजन करते हैं तो हम तो अभी आए हैं 10 साल से 20 साल से 30 साल से, उनकी कंपैरिजन हम नहीं कर सकते हैं, इतना जमा भी नहीं हो सकता, इसलिए वो सब कंपैरिजन भी नहीं कर सकते हैं। दूसरी बात है कि त्रिशंकु अवस्था की जो बातें हैं उसमें सबसे पहले हमने देखा है कि हम तो प्रैक्टिकल बातें करेंगे, हमने कुछ पढ़ा बड़ा नहीं है कहीं भी, लेकिन हमने जो देखा है वो हम बताते हैं कि कई बच्चों को हमने देखा है माता पिता के साथ चले जाते हैं, मतलब कि बाप माता पिता भी जाते हैं उसके साथ साथ बच्चे भी जाते हैं। बच्चे छोटे होते उसको समझ नहीं होती ब्रह्मा कुमारी क्या है, कैसे मतलब नियम क्या है, मर्यादा क्या है, लेकिन वो टीचर बहने बहुत प्यार करती है, कभी टोली दे देती है, कभी उसको कृष्ण राधा बना देती है, कहीं उसको बहुत ही प्रलोभन मिलता है, तो बच्चे माँ बाप के साथ साथ चले जाते हैं और ऐसे चलते चलते बड़े भी हो जाते हैं। तो माता पिता की इच्छा होती है कि हमारे बच्चे ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी बन जाए, जब भी उसको कभी पूछते भी नहीं है कि आपको बनना है नहीं बनना है, ऐसा भी होता है कि हम चलते हैं आप भी हमारे साथ साथ चलो। तो ऐसी स्थिति में जब बच्चे मैच्योर हो जाते हैं तो उसको मालूम पड़ता है कि ये रास्ता क्या है, ये रास्ता क्या है, लेकिन उसमें निकल नहीं सकते हैं, तो फिर उसमें उलझ जाते हैं और कहीं बहुत बड़ी उम्र के बाद फिर वो ज्ञान को छोड़ भी नहीं सकते हैं। और लोक लाज है कि क्या माता पिता का प्रभाव भी होता है कि अगर आप ऐसा करेंगे तो क्या होगा, तो बाबा की मर्यादा सब कुछ उसको सुनाते रहते हैं, तो उसकी अवस्था त्रिशंकु जैसी हो जाती है। और बाद में भी वो चले जाते हैं ज्ञान में से, शादी भी कर लेते हैं, वो भी हमने देखा, लेकिन भी शादी करने के बाद भी आते हैं, लेकिन बाबा ने कहा था एक बार भी अगर वो यहाँ से जाते हैं तो उसकी अवस्था बनाने में बहुत टाइम लगता है, तो उसकी अवस्था कैसी त्रिशंकु जैसी हो जाती है, कई हमने ऐसे उदाहरण देखा है। दूसरा है कि जो त्रिशंकु कैसे हो जाते हैं कि ज्ञान में चलते हैं, नेमिनाथ जैसे होते हैं, सुबह में देखो तो अमृत वेले बैठे हैं, अब बहुत अच्छा आंखें खोल के भी बैठे हैं, लेकिन हमको तो पता नहीं पड़ता है ना भाई इसकी बुद्धि कहाँ कहाँ जाती है। दूसरा कि क्लास में भी आएंगे, सब नियम मर्यादा सब कुछ लगेगा, लेकिन नेमिनाथ की ना आगे जा सकते हैं ना पीछे जा सकते हैं, ऐसे भी मतलब कि होते हैं। तो हम देखो जब भी देखो तो क्लास में बैठे हैं, सब सब जो भी क्लासेस होंगे सब क्लासेस में हाजिर होते हैं, लेकिन उसकी नियम और धारणा में कुछ कुछ कमी भी आती है। तीसरी बात है, बाबा ने तो कहा कि नियम में जितना चलोगे उतना अच्छा ही है, लेकिन समझ करके जब नियम में चलते हैं तो उसका फायदा है कि भाई अमृत वेले योग करते हैं उसका कितना कितना फायदा है। क्लास करने में हम बैठते हैं तो मुरली बाबा कहते हैं कि ध्यान से सुनने में, प्रेजेंट माइंड रख करके सुनने में कितना फायदा होता है, वो सब अगर ध्यान में रखते हैं, अटेंशन रखते हैं, तो हमारा जीवन आगे जाता है। दूसरा है कि कई बार है ना तो मजबूरियां होती है, कोई कोई के जीवन में है ना इतनी मजबूरी आती है। उसका मैं एक प्रसंग आपको बताती हूँ। एक बहन थी तो उसका बच्चा था, तो बहुत समय से वो ज्ञान में चली, वो बच्चा मुझे लगता है कि छोटा था, 3 साल का था तब उसको ज्ञान मिला था। तो जब भी जहाँ भी जाते थे वो बच्चे को लेके जाती थी, और बच्चे को लेके जाती थी तो बच्चा भी सबको दीदी कहता था, उसको भी ज्ञान समझ में आ जाता था। उसके बाद उसको जब हॉस्टल में रखा था, और हॉस्टल में रखा तो और जगह पे रखा था, और फिर वापिस आया तो बच्चा भी अच्छा था, सब कुछ अच्छा था, और इतना पक्के चलते थे, जहाँ भी जाते थे वहाँ ज्ञान की प्रचार बहुत करते थे, जहाँ भी प्रदर्शनी होती थी उसमें वो बहन वो परिवार पूरा आगे आता था, जहाँ भी मेला होता था वहाँ सब कुछ सरेंडर जैसे लगता था कि बहुत सरेंडर पूरा परिवार है। लेकिन उसके जीवन में अचानक बात आई गई, अचानक उसका बच्चा है ना उसको एक्सीडेंट में मर गया। अभी इतना पक्के थे वो, लेकिन थोड़ा उसके बाद उसका जीवन में ऐसा परिवर्तन आया, वो बच्ची बच्चे नहीं था तो वो बार बार वो उसके पति को कहती थी कि मुझे एक बच्चा चाहिए। अभी उसको पता है मर्यादा क्या है इतने समय से, लेकिन उसका दिमाग ऐसा हो गया तो उसने है ना 6 मास आना बंद ही कर दिया। सभी बोले क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, लेकिन उसका पति बहुत पक्का था, लेकिन बाबा ने उनको इतना बहुत साथ दिया, क्योंकि जिन जिन को उन्होंने ज्ञान दिया था, जिन जिन को सुनाया था ज्ञान दिया था, तो क्या वो जहाँ भी जाती थी ना वो कहते थे, अभी आजकल आप ज्ञान में सेंटर पे नहीं जाते हैं क्या, आजकल आपने ड्रेस भी चेंज किया है, तो 6 मास तक लोगों ने इतना उसके पीछे लग गए कि उसको फिर से आना पड़ा। तो आए तो फिर क्या हुआ कि हम तो मतलब तकलीफ हो गई हमको, तो लोग बहुत परेशान करते थे इसलिए हम आ गए, लेकिन उसके बाद भी 6 मास उसकी जो अवस्था है ना वो त्रिशंकु जैसी ही रही। उसके बाद बहुत ही पुरुषार्थ करने के बाद वो फिर अपनी गाड़ी चालू हो गई। तो कहने का मतलब कि मजबूरियां होती है किसी के जीवन में, क्या होता है कि अगर कोई भी ऐसी समस्या छोटी मोटी बीमारी आती है और कोई पूछते नहीं है तो भी उसकी अवस्था ना आगे बढ़ती है ना पीछे हटती है, ऐसा होता है। कोई कोई बार ऐसा होता है कि कोई हमने देखा है कि ये जो संगठन है ना, संगठन कभी संगठन भी अलग अलग होता है। जैसे हम कॉलेज में जाते थे वहाँ अलग अलग संगठन होता था, जैसे कोई मतलब ऐसे संगठन जो कॉलेज के बाहर खड़े खड़े लोगों को परेशान करने का, कोई कोई ऐसा संगठन था जो मतलब फर्स्ट मतलब बहुत ही अच्छी रीति से पढ़ते थे, फर्स्ट क्लास आते थे, तो कोई कोई ऐसा संगठन था जो कल्चर प्रोग्राम में फर्स्ट आते थे, तो ऐसा तो यहाँ भी ऐसा हर प्रकार के संगठन होता है, क्योंकि बाबा को तो राजधानी स्थापन करनी है, तो ऐसे नहीं है कि, लेकिन हमें चुनाव करना पड़ेगा कौन सा संगठन में हमको रहना है जो हमारी अवस्था अच्छी रहे, हमारी अवस्था अच्छी रहे, हम आगे बढ़ जाएं, क्योंकि बाबा ने कहा था ऐसा ऐसा संघ करना चाहिए, ऐसा अच्छे लोगों का संघ करना चाहिए जिससे हमारी अवस्था अच्छी भी बने, हम आगे भी बढ़े। ऐसा ना हो कि ऐसा संगठन करके बैठे, ऐसे लोगों के बीच में बैठे जो हम जहां थे उससे भी नीचे चले जाए। तो संगठन का बहुत ही ध्यान रखना चाहिए। संगठन तो बहुत बड़ा है, रोज रोज नहीं, रोज रोज होता है, लेकिन सारे दिन नहीं होता है। लेकिन संघ दोष में बहुत सारी बातें आती है। संघ दोष ऐसा होता है जो अच्छे अच्छे व्यक्ति को भी संघ दोष में मतलब कि ज्ञान में वो पीछे रह जाते हैं। कई बार हमने देखा है कि व्यक्ति बहुत आगे जा रहा है, इसको संघ ऐसा मिला है, तो संघ जब ऐसा मिलता है तो भी व्यक्ति वो त्रिशंकु जैसा बन जाता है, कहाँ जाऊं कहाँ नहीं जाऊं ऐसा होता है। तो कई बातें हैं जिसमें व्यक्ति मुंझ जाता है और कई बार वो अपने दिल खोलता नहीं है। क्यों नहीं खोलता है? क्योंकि ऐसी बुराइयां आ जाती है तो वो फिर अपना स्पष्ट सब बातें किसी को कर नहीं सकता, बड़ों के आगे नहीं जा सकता है। कई बार हमने देखा है कि बड़ों के आगे जो जाते हैं ना, वो अगर थोड़ा भी दिल खोल देते हैं तो उनका जीवन अच्छा भी बन जाता है। लेकिन कई तो ऐसे होते हैं जो बड़ों के आगे जाने से मतलब कि डरते हैं कि अगर हमको कुछ हो जाएगा, जाएंगे कुछ शिक्षा में सावधानी मिलेगी, तो डरते भी है। तो अगर हम ये हमारी जो ब्राह्मण जीवन में जो ऐसी अवस्था आ जाती है, या तो ब्राह्मण जीवन में कोई भी मूंझ आ जाती है, तो हमें तुरंत ही बाबा ने कहा है कि बड़ों का आधार लेना चाहिए, बड़ों से मिलना चाहिए। और दूसरी बात है कि अगर हमने ये भी देखा है कि त्रिशंकु जब मतलब ऐसी अवस्था हो जाती है, तभी वो इसके कारण भी होती है कि उसको जहां जहां मान सम्मान मिलता है वहां बहुत दौड़ के जाते हैं, इतना दौड़ के जाते हैं, अपने को भी भूल जाते हैं, अपना पुरुषार्थ को भी भूल जाते हैं, अपना डिपार्टमेंट को भी भूल जाते हैं। मान मालूम नहीं है कि हमारी ये सेवा है, वो सेवा छोड़ करके हम इतने दौड़ दौड़ के जाएंगे तो क्या होगा, उस समय कुछ सब कुछ भूल जाते हैं कि भाई हमको जाना ही। तो ये भी तो एक ऐसी अवस्था है, उस समय तो लगता है बहुत आगे है, लेकिन वो अपने मन में समझते हैं कि हमारी अवस्था ना आगे है ना पीछे है। तो ऐसे मान शान के पीछे, बड़ों के पीछे इस प्रकार से भागना, अपना डिपार्टमेंट छोड़ के भागना, या हमारी ड्यूटी छोड़ करके भागना, वो ऊपर से तो अच्छा है लेकिन अंदर से तो त्रिशंकु अवस्था ही होती है। चौथी बात है कि जब भी सेवा व्यक्ति को बहुत होती है, क्योंकि हम भी जब सेंटर में आए ना तो सेवा बहुत होती थी, इतनी सेवा होती थी कि हम मुरली पढ़ भी नहीं सकते थे, ऐसी सेवा होती थी। क्लास के समय भी सेवा होती थी क्योंकि बहुत सारी पार्टी आती है, बहुत काम करना पड़ता था, तो इतनी सेवा होती थी कि सेवा ही ऐसा लगता है, सेवा ही जीवन में मतलब कि सफलता का आधार है, और स्व उन्नति तो एक तरफ रह जाती थी। तो स्व उन्नति के लिए जब योग में बैठते थे ना, तभी भी मतलब कि कहीं ना कहीं कार्य आ जाता था। तो बहुत टू मच सेवा होती है ना, उसमें भी हमारी लाइफ जो होती है ना, पहले हमको लगता है कि सबकी दुआएं मिलती है, सब कुछ मिलता है, लेकिन स्व पुरुषार्थ तो जरूर होना चाहिए, क्योंकि बाबा ने कहा है कि स्व और स्व की सेवा और सर्व की सेवा और साथ साथ योग का बैलेंस होना चाहिए। तो ये बैलेंस नहीं होता तो भी हमारे जीवन में त्रिशंकु अवस्था हो जाती है। कई बार आपने देखा होगा योग, बाबा ने एक बार कहा था कि आप है ना तो एक साल शांति मतलब बिल्कुल ही प्रोग्राम नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है, तो फिर क्या करेंगे? तो लोगों ने एक मास दो मास तो ऐसा लगा कि अभी क्या करें हम, तो और ही जास्ती संकल्प चलने लगा। तो मीन्स की सेवा भी चाहिए, योग भी चाहिए, स्व की सेवा भी चाहिए, सब प्रकार की बातें चाहिए। दूसरा है कि हमने ये देखा है कि इसका निवारण क्या है, तो निवारण में हमको एक बात बहुत अच्छी लगी थी, हमने इस मधुबन में देखा कि ये जितनी भी दादियां थी, शांतामणि दादी बहुत अंतर्मुख रहती थी लेकिन सबसे दूर नहीं थी, और दादियों ने संगठन में सबको चलाया था। जितनी भी दादियां थी आपको भी पता होगा, जितनी भी दादियां थी कोई भी दादी उसमें से मिस नहीं होती थी। दादी सबको बुलाती थी, सबके संगठन में मतलब कि सब कार्य होता था, सबको सब पता होता था। तो इस संगठन था जिसमें हमने देखा था चंद्रमणि दादी जी इंद्रप्रस्थ में रहते थे, वो तो पहले ज्ञान सरोवर में रहते थे, पहले तो वो पंजाब में रहते थे, लेकिन कितना संगठन की शक्ति थी, कितना प्यार की शक्ति थी। दादी ने एक ही ऑर्डर किया था, एक ही बार बताया था कि दादी आपको अभी ज्ञान सरोवर संभालना होगा या तो यहाँ आना पड़ेगा उसके पहले। तो दादी ने कुछ भी सोचा नहीं कि अरे मेरा इतना पंजाब है, मैं ऐसा मेरा इतना, दादी ने तुरंत ही दादी ने स्वीकार कर लिया और दादी आ गई। आ जाने के बाद दादी को जो कमरा मिला ना इंद्रप्रस्थ में, अभी दादी रहती है ना जानकी दादी, वो कमरे में दादी रहती थी और उसके सामने जो है ना वो इंद्रप्रस्थ के दूसरा जो कमरा है ना उसमें निर्मल संत दादी रहती थी। इतनी बड़ी दादियां उतने छोटे छोटे कमरे में रहते थे और उस समय उनका पुरुषार्थ भी सारे दिन मैगजीन पढ़ना ये सब कुछ उसका रहता था। तो मैंने देखा कि उनकी संगठन इतना अच्छा था, इतना अच्छा था। और दादी जी की जो ये प्रबंधन व्यवस्था तो ऐसी अच्छी थी, ऐसा तो एडमिनिस्ट्रेशन कोई नहीं होगा जिसको हम मतलब कि हमने देखा है। पहले तो हम दूर से तो हम देख नहीं सकते थे, लेकिन हम नजदीक, जब जितना नजदीक आए इतनी निर्माणता, इतनी निर्माणता थी दादी में और इतनी गुणों से भरपूर थी। हमने वो देखा था कि जो दादी आंगन में बैठती थी ना, कोई भी आता था ना, भाई बहन आते थे ना, तो दादी बुलाती थी उसको। वो जो पोछी करने वाला भाई आता था ना, उसको दादी बुलाती थी, इधर आओ, आपको ये घर को साड़ियां नहीं पहनानी है क्या सफेद, ऐसे अच्छी तरह से बात करती थी। तो हर एक व्यक्ति का दादी के साथ डायरेक्ट कनेक्शन था, ऐसा नहीं कि डिपार्टमेंट थ्रू कोई बात नहीं, वो तो होती थी, लेकिन फिर भी दादी का डायरेक्ट कनेक्शन था। तो दादी का जो वो बोलने का, दादी को मिलने का, दादी को संगठन में रहने का ऐसा था। और एक दादी थी वो जो सीतु दादी थी, वो मतलब कि वहाँ कहाँ से हापुड़ से आती थी, उसको बहुत ही तकलीफ होती थी। और उसको तकलीफ इसलिए कि उसका शरीर में फ्रैक्चर बहुत कभी कभी गिर जाती थी, फ्रैक्चर होता था। तो मैं उसको कहती थी, दादी आप बैठे रहो ना, आप क्यों ओम शांति भवन में जाते, बोला ना ना संगठन में जाने का ताकत रहती है। और कभी कभी तो है ना ज्ञान सरोवर प्रोग्राम एक भी मिस नहीं करती थी, जो भी मिले ना, कोई उसको ले जाने वाला नहीं मिले ना, तो भी जो भी मिले ना उसका हाथ पकड़ के आती थी। तो हम कहते दादी क्यों आप ऐसा मुश्किल काम करते, बोला नहीं नहीं संगठन में रहने का, दादियों के संगठन में रहने का। तो हमको ये लगा कि संगठन कितना इम्पोर्टेंस है, कि दादियां ऐसे दादियां नहीं बनी है, उसका संगठन देखो, शुरुआत का संगठन, बाबा के साथ का संगठन, वो तो उनको आगे ले आए। तो हमको वो तो नहीं, लेकिन ये संगठन तो हमको मिला है, तो इस संगठन से कभी भी मिस नहीं करना। मैं भी अभी मैंने पक्का वादा किया है कि कभी भी मैं भी मिस नहीं करूंगा। आज मुझे है ना, मैंने एक्चुअली तैयार नहीं किया था, मैं सच बताती हूँ, 13 दिन पहले मुझे मिला था, क्योंकि मैंने उनको बोला था सचिन भाई को कि मुझे है ना तो थोड़ी तकलीफ होती है, तो आप मुझे है ना तो बहुत दिन देना, तो उन्होंने मेरी बात मान ली थी। लेकिन हमारी ऑफिस में आप देखोगे तो एक तो हमारी बहन जी नहीं है तो हम अकेले बैठते हैं, दूसरा क्या है कि जो भी आते हैं ना तो हमको पढ़ने ही नहीं देते हैं, क्या करते हो क्या करते हो। तो ऐसे काम कुछ नहीं है, लेकिन मतलब ऐसा होता है। तो हमें मतलब कुछ तैयार किया नहीं है, जैसे हीना बहन बहुत अच्छा सुनाती है और सब अच्छा सुनाते हैं, ऐसा हमने कुछ तैयार नहीं किया है। लेकिन कहने का मतलब कि इस संगठन में आने से मैंने ये देखा है कि यहाँ जितने भी बैठे थे कभी भी नहीं बोलते थे, कभी भी हमने सुना नहीं है उनको बोलते हुए, लेकिन यहाँ आते आते बड़े से बड़े प्रोफेसर बन गए हैं। तो ये कैसी संगठन की कमाल है ना, इस संगठन ही हमको आगे ले जाएगा, इस संगठन ही आपकी गुण मूर्त शक्ति मूर्त बनाएगा। क्योंकि ये जो सुशील भाई है ना, वो बहुत बड़ी सेवा करता है, सभी को भेज देता है व्हाट्सएप में। तो ये जो है ना सारी दुनिया में, मेरे को लगता है बहुत सारी जगह पे जाता, लंदन में भी हम गए ना तो बहुत सारी जगह पे हमको बोला कि सचिन भाई का क्लास आता है, आप लोगों का क्लास आता है, तो ये क्लास बहुत जगह पे जाता है। इसलिए हमें एक एक काम करने का कि अभी यहाँ रहते रहते सभी शक्तियाँ सभी गुण बाप समान संपन्न बन जाना है। ओम शांति।